कोई सवाल, जितनी बातें हुई उसके अंदर रहते हुए आपके जहन में उभरा हो या कुछ आप कहना चाहें तो हाथ खड़ा करें। जी आप पीछे से। हाँ आपका सवाल मैं दोहरा देती हूँ, ऑनलाइन वाले भी सुन ले, कि ये दुआ करना कि अल्लाह ताला को कहना कि अपने नबी के तुफैल मुझे दे, मेरी ये दुआ कबूल कर ले। राइट, देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, आप लोग यहाँ रोज़ सुबह आके 3-4 दुआएं सीख रहे हैं ना, फ़ाइनली करीब इसमें अम्बिया कराम की दुआएं आएंगी, सूरत अम्बिया की दुआएं शुरू होंगी, तो सब नबियों की दुआएं उसमें आ रही हैं। आप कहीं भी देख लो, जो स्टाइल नबियों का था ना वही आपका है। हम कहते हैं जो एक दिन सिरात अल मुस्तकीम सिरात अल लजीना अनमत अलैहिम, अल्लाह में ज़िंदगी के हर मामले में उनका तरीका सिखा जिन पर तेरे इनाम हुए थे, और उसमें सबसे पहला नाम नबियों का है। नबियों ने जिस तरह दुआ मांगी है ना वही हमारा तरीका है। अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगते वक्त ये कहा था कि मोहम्मद के रब अगर तू मुझे मोहम्मद के तुफैल मेरी तौबा कबूल कर ले तो हम भी मांग लेंगे, उन्होंने क्या कहा, रब्बना ज़लमना, रब्बना मेरा रब, हर जगह रब्बी और रब्बना है ना, तो इस तरह अवॉइड करना चाहिए, इसमें शिर्क हो जाता है, जाहिर बज़ाहर ना भी नियत हो लेकिन शिर्क होने लगता है। ये ऑनलाइन से एक दो चीज़ें हैं, सवाल है, मैं उनका भी हेल्प कर दूं। ये लिखते हैं कि सो क्या हमें फिर टीचर के आने पे स्कूल में खड़े नहीं होना चाहिए? देखिए आपको इस मौजू को उन तक पहुँचाना चाहिए, आप रिस्पेक्ट की नीयत से नहीं खड़े होंगे और ऑफ कोर्स नहीं खड़े होना चाहिए। अगर वो कहे नहीं ये तो एक ऐसे ही है, ये डिसिप्लिन के लिए, अभी जैसे आप यहाँ बैठे ना मुझे आपकी लाइनें टेढ़ी लगे तो मैं आपको कहूँ अच्छा आप सारे खड़े हो जाएं और दोबारा बैठे, ये इसका पर्पस है ना एक, कि आपकी लाइनें ठीक की जाए, या मुझे लगे कि आप बहुत देर से बैठे हुए थे और अब मैं आपको कहूँ अच्छा आप 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, स्ट्रेच करें, दोबारा बैठें, मकसद है ना। और अगर दूसरा सूरत है कि मैं को के मतलब मिसाल है कि आपकी टीचर कमरे में आए तो आपके इनकी रिस्पेक्ट में खड़े हो जाएं तो शिर्क हो जाएगा ना। तो लिटरली खड़ा होना बुरी बात नहीं है लेकिन रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होना। अब बच्चों को अगर कहा जाता है तो इसकी तो वही दलील है ना कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अपनी जगह पे आए तो कुछ सहाबा कराम आपको देख के खड़ा होने लगे, कहा ये क्या हुआ, कहा हम हबशा गए थे तो वहाँ जब उनका बादशाह निजाशी आता है तो दरबारी खड़े हो जाते हैं, तो हम तो आपसे उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो फिर आपने मना किया था कि इसकी इजाज़त नहीं है, फिर रुकू में जाना और सजदा जो हम हदीस पढ़ चुके वही बात है। ये लिखते हैं कि इन माई फैमिली इन लॉ हाउस वी टच फीट्स ऑफ आवर इन लॉ इट्स नॉट राइट। जी देखिए ज़रा कितनी अच्छी बात है ना लिखी कि बाज़ लोग बड़ों के पाँव छूते हैं ना, रुकू हो जाता है उसमें, इजाज़त नहीं है इसकी। और हिंदुइज्म में तो मेरा ख्याल है कि ये एक रिस्पेक्ट का ख़ास तौर पे सिंबल है कि बड़ों के पाँव छूना, आप देखिए पूरे झुक जाते हैं ना उसमें। वैसे बुजुर्ग आए हैं खड़े हुए, आप उनका जूता पहना रहे हैं तो झुकेंगे, कोई हर्ज नहीं है। देखिए इस्लाम हर चीज़ की एक लॉजिक चाहता है, कुछ भी आप सुबह से यहाँ बैठे हैं ना तो इसकी रीज़न है क्या बैठे हुए ना, और अगर आप कहें कि इस रुख पे यूं बैठना हमारे लिए एक इबादत है, अब आप किबला रुख नहीं है इस वक्त, ठीक है आपका रुख मेरी तरफ है, मेरा रुख आपकी तरफ है, ये हमारी ज़रूरत थी ना, आप लोग साइड से इस तरह बैठे हुए ना, ये ज़रूरत का तकाजा है ना, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम कुछ ना करें, आप देखें किसी कमरे में जाएं और लोग इस तरह बैठे हों, सामने पीर साहब बैठे हुए और उनके इर्द गिर्द सामने उनके मुरीद बैठे हैं, वो खामोश बैठे हुए हैं, क्या कि पीर साहब को देखना या इस तरह उनके सामने बैठना भी हमारी इबादत है। बाज़ लोग तस्वीर के सामने बैठते हैं, बाज़ लोग पीर साहब की शबीहों के सामने बैठते हैं, बाज़ लोग अल्लाह के नबी का जूता बना के छत के नीचे उसके ऊपर बैठते हैं, नीचे बैठते हैं। मैं ऐसे एक घराने को जानती हूँ कि उनके घर की यानी घर की जो बेसमेंट है उसकी छत के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा जूता बनाया हुआ है, और जब कोई मसला होता है आके नबी के उस जूते के नीचे आके दुआएं मांगते हैं कि नबी के जूते के तुफैल अल्लाह हमारा ये मसला हल कर दे। यानी ये तो दीन बड़ा आसान है, यकीन करें ये दीन होता तो मुश्किल नहीं थी कुछ भी, थोड़े से जो चाहो करो, जो चाहो खाओ, जो ज़िंदगी गुजारो, और बस ये 2-4 काम करके अपने आप को तसल्ली दे दो, तो इस चीज़ से इंसान को बहुत रुकना चाहिए। जी आप
सारे लोग औरतें भी और लड़कियां भी और मर्द भी जाते हैं,
जी
बारी बारी उनकी ज्यारत करने जाते हैं।
जी अब देखिए इनका सवाल बड़ा अहम है, इन्होंने कहा कि बाज़ दफ़ा पीर साहब किसी जगह आते हैं और लोग सिर्फ उनकी ज़्यारत के लिए जाते हैं कि इनको देखना, और आप ये कह रहे हैं, मैंने तो ये भी सुना है कि लोग कहते हैं, यानी एक मेरे पास पेपर रखा हुआ है वहाँ ह्यूस्टन में, मैंने किसी क्लास में पढ़ के भी सुनाया था कि वो कहते हैं कि हमें हज पे जाने की ज़रूरत नहीं, अपने जो जिसको वो जो भी कहते हैं अपने मजहबी रहनुमा को कहते हैं उनको देखना हमारा हज है, और ये कैसा खास मसलक है या फिरका है कि जब इनके मजहबी रहनुमा साल के बाद एक खास शहर में आते हैं, पूरे यूएसए और अमेरिका और कनाडा से ये लोग फ्लाइट्स बुक करके उस दिन उस शहर में आते हैं। कहते हैं उस दिन सारे होटल बंद होते हैं, बुक होते हैं सारी सीटें, और सिर्फ इतनी दूर दूर से जाते हैं। क्यों? इनका कीदा कि हमने अपनी आंखों से अगर अपने उस दौर जो हमारा उस वक़्त का इमाम है उसको देख लिया तो हमारा हज हो गया और हमारे पे अब जहन्नुम आराम हो गई। ये तो बात नहीं है। देखिए कि अल्लाह के नबी के सहाबियों वाला मुकाम हम दूसरों को दे सकते हैं तो बहुत बारीकी है इस मौजू पे, तो इतनी बात करने की ज़रूरत है कि और इस पे ये हम तो एक थोड़ी सी भूख लगा रहे हैं, जैसे सीख रहे हैं इस मसले पे। इंशाल्लाह हमने आगे जाके और बहुत कुछ सीखना है ताकि हमारे अकीदे में बेहतरी हो जाए। अल्लाह ताला आसानी करे, यहाँ पे इस टॉपिक को क्लोज करना पड़ेगा। एक ये इनकी ऑनलाइन से एक जो कमेंट है उसको पढ़ देती हूँ। कहती है, इन आवर कंट्री वी ऑफर सलाम टू एल्डरली पीपल लाइक वी डू रुकू, इट्स नॉट राइट एंड इफ़ वी डोंट डू दिस से वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग दैम। ये कह रही है कि अपने बड़ों के लिए हम रुकू की तरह जैसे झुकते हैं, और अगर कोई ना करे तो वो ये कहते हैं कि आपने रिस्पेक्ट नहीं की। तो आज पता चल गया कि ऐसा नहीं करना, और बड़ों को प्यार से बता देंगे तो देखिए आप उनकी खिदमत करें ना, आप उनसे बातें करें, उनको परवाह भी नहीं, आप झुक जाएं बस और फिर काम कुछ ना करें, किसी को क्या मिलेगा। जी बैत का मसला देखिए कि बैत का ताल्लुक दो चीज़ों से होता है। अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में बैत होती थी, जब भी कोई नया मुसलमान होता था तो वो आपके बैत करता था, आप हाथ पे उसके हाथ रख के फिर आप उससे कुछ अहद लेते थे जिसमें तौहीद से लेके बहुत सारी, सूरह मुमताहना की आखिरी आयतों में वो पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है अगर आप पढ़ना चाहें। शिर्क नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे, अपने बच्चों का कत्ल नहीं करेंगे, ये तो बात होती थी उस दौर में। उसके बाद आगे हज़रत अबू बकर से लेके आगे के हर वो वक्त खलीफा यानी जो मुस्लिम हुक्मरान भी हो और उसके पास यानी रूल बनाने का हुक्म भी हो। बस आज के दौर में एक आलिम दीन है, कोई भी बुजुर्ग है, वो लोगों को मसला तो बता सकते हैं लेकिन वो मसला लागू नहीं कर सकते ना कि आप अब ये करें भी। बस ये एक आलिम है वो कह सकता है कि सूद हराम है लेकिन उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने मुल्क से पूरा सूद ख़त्म कर दे, तो दैट मीन फिर वो इस चीज़ से निकल गया कि उसकी बैत की जाए। बैत के लिए दो लाजिम चीज़ें हैं, एक क्या होती है कि वो उस मसले को जानने वाला भी हो यानी आलिम है और साथ वो हुक्मरान भी हो। और इस्लाम का जो मिजाज है ना, आप हिस्ट्री में इंशाल्लाह जब कभी हम बात करेंगे थोड़ी सी तो आप देखेंगे कि इस्लाम का मिजाज क्या है कि हुकूमत और दीन एक ही होता था। जो इमाम वक्त होते थे हुक्मरान वही नमाज पढ़ाते थे, अबू बकर सिद्दीक हुक्म अगर खलीफा थे तो नमाज पढ़ाते थे। आज के दौर में नमाज पढ़ाना तो दूर की बात है, अल्लाह रहम करे पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते तो कहानी बदल जाती है ना। तो लिहाजा बैत का ताल्लुक खिलाफत से, खिलाफत वो जिसके अंदर फिर दोनों चीज़ें साथ हों। ठीक है, तो जज़ाकअल्लाह खैर, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।